सो खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदा का कड़वा कलाम सुनने के लिए तैयार हैं जी, क्योंकि कड़वाहट बहुत दफ़ा हमारे लिए बरकत का बायस बनती है। जैसे कहते हैं ना, नीम बहुत कड़वी होती है, कड़वी होती है ना जी, खाना उसे क्या करना है, चखना हमारे लिए हमारे मुंह का जायका बदल देती है। लेकिन अगर नीम के पत्तों को या नमोनियों को किसी अंदरूनी बीमारी के लिए इस्तेमाल किए जाएं तो वो क्या है, बरकत का बायस है, वो इंसानों के लिए शिफा का बायस है। अगर किसी के चोट आ जाए तो नीम के पत्तों को तेल में नमक में मिलाकर बांधा जाए तो सोज उधर जाती है। अगर किसी का खून मीठा हो जाए तो कहते हैं हकीम कि नमोनी खा लें, नमोनियों का पानी पिएं, तो वो खून जो मीठा, जिसमें बहुत ज़्यादा मीठे खून के बायस बीमारियां लगती हैं, वो खून साफ हो जाता है। सो खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का कलाम क्या है, कड़वा है, कड़वा है, लेकिन जब कोई उसे हजम कर लेता है तो उसके लिए क्या बन जाता है, शहद बन जाता है। सो आए चंद एक बातों पर गौर करें। हमने पिछले दिनों में सीखा था कि कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। इस दुनिया में बहुत से फरेबी लोग हैं, और ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही थी कि मेरे बाद बहुत से धोखा देने वाले आएंगे, बहुत से धोखा देने वाले आएंगे। इसलिए आज हम यहाँ पर किस लिए मौजूद हैं, खुदा का कलाम सुनने के लिए। इसलिए मैंने पिछले हफ्ते कहा था ठीक 10 बजे हम खुदा का कलाम शुरू करेंगे और 11 बजे से पहले इबादत ख़त्म करेंगे। इसलिए मैं अपने अल्फाजों के बगैर, अपने अल्फाजों के खिलाफ जाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि जी हाँ जी करेंगे और फिर आप का और जो नहीं अभी तक आए उनका इंतज़ार करता रहूँ 1.5 घंटा, तो ये फिर खुशी की इबादत नहीं है, ये खुशी की इबादत नहीं बल्कि बोझ है। इसलिए मैं चाहता हूँ आज चंद एक बातों पर गौर करें। सब्बत का दिन, यहूदी रिवाज के मुताबिक सब्बत कौन सा दिन था, किसी को याद है, हफ्ते का, कौन सा था, हफ्ते का। आज हम क्यों इबादत कर रहे हैं, एतवार का दिन, एतवार का दिन हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था। पूरी दुनिया में एतवार की इबादत इसीलिए मसीही लोग मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था। सबको याद है जब हम क्या करते हैं कि ईस्टर, ईद क़यामत मसीह, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद मनाते हैं, तो सुबह सवेरे हफ्ते की सुबह जैसे मरियम, मरियम मगदलीनी और दूसरी औरतें कब्र पर गई थी, तो क्या था, हफ्ते का सब्बत का पहला दिन, सब्बत के पहले रोज वो क्या गई, कब्र पर गई। तो हम इतवार क्यों मनाते हैं मसीही लोग, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था। क्योंकि अगर हम कहें कि आज सब्बत का दिन है तो फिर हमें सब्बत के कानून को मानना होगा। चाहते हैं सब्बत के बारे में पढ़ना कि सब्बत कैसा था, यहूदी सब्बत, आए मेरे साथ देखें। जो बहन भाई कलामे खुदा पढ़ सकते हैं, लिखना चाहते हैं लिखें। खरूज 16 बाब, पुराने अहदनामा में खरूज की किताब उसका 16वां बाब। खरूज का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। सो जब बनी इसराइल कौम बियाबान में सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने ये वाक़यात, ये सच्चाइयाँ लिखी और मूसा ने इन बातों को दर्ज किया, और ये वो हुक्म है जो पुराने अहदनामा में दिए गए थे। पदेश की किताब के बाद आपको कौन सी किताब मिलेगी, खरूज की किताब, उसका 16 बाब, मेरे साथ उसकी 23वीं आयत को देखें। और यहां पर खुदावंद का बंदा मूसा क्या कहता है, उसने उनको कहा कि खुदावंद का हुक्म यह है कि कल खास आराम का दिन यानी खुदावंद का मुकद्दस सबत है, जो तुमको पकाना हो पका लो और जो अबालना हो अबाल लो और जो बचा रहे उसे अपने लिए सुबह तक महफूज रखो। चुनाचे उन्होंने जैसा मूसा ने कहा था उसे सुबह तक रहने दिया और वो ना तो सड़ा और ना उसमें कीड़े पड़े। सो यहूदियों को यह हुक्म था कि 6 दिन तक काम करना, खाना पीना और 7वें दिन की सब्बत की तैयारी, जो यहूदी रिवाज के मुताबिक कौन सा था, हफ्ते का दिन, उसमें क्या करना, जो कुछ खाना पीना पकाना है उसे पहले से तैयार कर लेना, ताकि एतवार जैसे आज हम कर रहे हैं, सब्बत के दिन तुम क्या करना, पूरे दिल से पूरी तवज्जो से खुदावन खुदा को क्या करना, मोहब्बत करना, पूरी दिल से खुदावन की क्या करना, इबादत करना। मेरे साथ एक और हवाला देखें, खरूज 20वां बाप उसकी 8वीं आयत से पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा गया है, ये यहूदियों को जो सब्बत दिया गया था कि सब्बत के दिन को मानना। खरूज 20वां बाप उसकी 8वीं आयत से क्या लिखा है, याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना, याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। यहां पर कोई यहूदी है, यहूदी तो नहीं कोई, आगे जी, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, 6 दिन तक मेहनत काम मशक्कत सब कुछ करके तू अपना काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावन तेरे खुदा का सब्बत है, उसमें ना तू ना कोई ना तू काम ना उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा ना तेरी बेटी ना तेरा गुलाम ना तेरी लौंडी ना तेरे तेरा चुपाया ना कोई मुसाफिर जो तेरे हाँ फाटकों के अंदर हो, क्योंकि खुदावन ने छठे दिन में आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उसमें है सब कुछ बनाया और 7वें दिन को आराम किया, इसलिए खुदावन ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। अगर हम यहूदी हैं तो फिर हमें इस हुक्म को बड़े एहतियात के साथ मानने की जरूरत है कि हमारा बेटा बेटी कोई काम ना करे, ये यहूदियों को हुक्म था। आज एतवार के आराम में, एतवार यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था, इसलिए हमें 6 दिन हमारे पास है, हमें क्या करने की जरूरत है, अपने कामों को अपनी जिम्मेदारियों को पहले से निभाने की जरूरत है। शादी ब्याह हो तो हम बहुत ज्यादा तैयारियां करते हैं, बेटे बेटियां सब कुछ, लेकिन एतवार के दिन जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम उसे उस तौर से क्या कहते हैं, इज्जत नहीं देते। सो हमने सीखा था कि सब्बत का दिन, अगर हम सब्बत का दिन इसे समझते हैं तो फिर उसकी इज्जत करने की जरूरत है। पहली बात तो यहूदी यहां पर कोई भी नहीं, दूसरी बात अगर हम सब्बत की ताबेदारी करना चाहते हैं तो फिर पिछले 6 दिनों में सब कुछ करके आज के दिन को यहूदी रिवाज के मुताबिक जाएं, आज के दिन कपड़े नहीं धोने, यहूदी रिवाज के मुताबिक जाएं, आज के लिए खाने पीने का सामान पहले से लेकर आना, यहूदी रिवाज के मुताबिक जाएं, अपने कपड़ों को पहले से नमाज के लिए तैयार करना, यहूदी रिवाज के मुताबिक जाएं तो वक्त पर खुदा के घर में आना, यहूदी रिवाज के मुताबिक जाएं, क्यों खुदा वक्त की कदर करने वालों को बरकत देता है, क्योंकि ये दुरुस्त है। हमें, अगर हम खुदा के लोग हैं तो हमें इन छोटी छोटी बातों से अपनी जिंदगी में देखने की जरूरत है। दूसरी बात चाहता हूं कि इंसानी अहकामात, हम खुदा के हुक्म छोड़कर इंसानी रस्मों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। खुदा ने बनी इसराइल कौम को 10 हुक्म क्यों दिए थे, क्योंकि वो खुदा के पीछे नहीं चलना चाहते थे, बल्कि चाहते थे कि हमें कोई ना कोई हुक्म दिए जाएं, हमें कोई ना कोई हुक्म दिए जाएं, हम खुदा के पीछे चलेंगे, हमें कुछ ना कुछ बताया जाए, हमें एक लिस्ट दे दी जाए, ताकि हर रोज हम कहें हमने खुदा के लिए दुआ की, हमने खुदा के लिए सफाई की, हमने खुदा का 10वां हिस्सा दिया, हमने ईमानदारी से जिंदगी गुजारी, हमने माँ बाप की इज्जत की, अपने पड़ोसी से मोहब्बत नहीं की, सारे गुनाहों सारे हुक्मों का क्या हो गया, कोई फायदा नहीं। सो अगर आप और मैं, अगर मैं आपको हुक्म देने शुरू कर दूं, मुझे अपने पास से हुक्म देने की जरूरत ही नहीं, खुदा का कलाम हमें हुक्म देता है। इंसानी अहकामात में आज के दौर में, उस दौर में, आज के दौर में लोग निजात के लिए क्या करते हैं, कहते हैं कि निजात हासिल करने के लिए हमें जिया जिस्मानी रियाजतें और अमाल करने की जरूरत है। क्या यहां पर कोई कामल है? कोई कामल है तो हाथ दिखाए। हम सब गुनाह करते हैं ना जी, खासकर बहने भाई जब बैठ जाते हैं मूंगफलियां खाते खाते एक दूसरे की चुगलियां लगाते हैं जो कि 4 साल पुरानी होती हैं। खुदा के कलाम की आयत नहीं याद आएगी, याद आ जाएगा कि 4थे महीने की 12वीं तरीक को बाजी पता मैंने कपड़े धोए थे, इन्होंने मैनू साला नहीं दिता सी। ऐसे झूठ हम याद रखते हैं, ना कि सिर्फ ये कि पिछले एतवार खुदा के कलाम में से क्या सीखा था, कि खुदा के कलाम में कुल कितनी किताबें हैं, खुदा के कलाम में हमें यसु मसीह क्या कहता है, हम इन बातों को याद नहीं रखते। मैंने शुरू से कहा था, आज सुबह भी मैंने कहा कि बहुत सी कड़वी बातें खुदा के कलाम में से की जाएंगी और हमारे पास चुनाव होगा कि कोई दो मालकों की खिदमत नहीं कर सकता, या तो फिर हम खुदा की खिदमत करेंगे या फिर दुनियावी बातों के पीछे भागेंगे। सो इंसानी अहकामात, नेहनामा में पालूस रसूल कहता है कि गलतियों की कलीसिया को, मेरे साथ देखें गलतियों 4 बाब, गलतियों की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का खत उसका 4 बाब। आज ये रस्में हमारी जिंदगी में भी पाई जाती हैं, आज हम लोगों को ज्यादा अहमियत देते हैं, मुझे मत अहमियत दें, मेरी बात मत सुने अगर वो खुदा की तरफ से नहीं, मेरी बात को कोई आपको मेरी बातें भूल जाएंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा, यीशु मसीह की बातें भूलेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान उठाएंगे। कदर करना सीखें खुदा की। क्या लिखा है गलतियों 6 बाप उसकी 11वीं आयत से, नहीं पहले 4 बाब देखते हैं, वहां पर भी वाह वाह कड़वी बातें हैं, जरा गौर से सुने। 4 बाप उसकी 8 आयत, लेकिन उस वक्त खुदा से नावाकिफ होकर तुम उन माबूदों की गुलामी में थे जो अपनी जात से खुदा नहीं। एक दौर था जिसमें मैं बुत परस्त था, एक दौर था आप भी किसी ना किसी बुत परस्ती में थे और हो सकता है आज भी किसी ना किसी बुत परस्ती में हैं। वो किसी बाबे की हो सकती है, किसी पीर की हो सकती है, हो सकता है कि कोई ना कोई देवी देवता हमारे घर की एक नुक्कड़ में बड़ी सोनी सी चादर के पीछे उन चिरागों को और उन तस्वीरों को छुपाया हो। पादरी साहब इत्थे ही दुआ कर लिए, उस कमरे च नहीं जाना, वो पाक कमरा, वो पाक माता दा कमरा वा। उस वक्त खुदा से ना वाकिफ होकर तुम गैर मबूदों की गुलामी में थे जो अपनी जात से खुदा नहीं। हमने ऐसी बड़ी बुत परस्ती की है, कब्रिस्तान भरा हुआ है। और क्या लिखा है, मगर अब जो तुम खुदा को पहचानते, मगर अब खुदा ने तुमको पहचाना, बल्कि खुदा मगर अब तुमने खुदा को पहचाना बल्कि खुदा ने तुमको पहचान लिया, तो उन जहीफ और नकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रजू होते हो जिनकी दोबारा गुलामी करना चाहते हो। वो पुरानी बातें, पुरानी रस्में जो इंसान ने शुरू की है, क्यों फिर उसकी तरफ जाते हो? और क्या लिखा है, तुम दिनों और महीनों और मकरर वक्तों और बरसों को मानते हो। बनाए हुए ना दिन, बुध का दिन, काली माँ का, जुमेरात का दिन, 13 वाले का, जुमे का दिन, बहुत से नाम हैं, आप खुद गिन सकते हैं अपनी उंगलियों पर। हफ्ते के दिन, बूंदी मूंगरे, बाबे फलां दे ते बाबे टमका दे, बुतों से हम क्या हैं, सबसे वाकिफ हैं। इसलिए हफ्तों को, दिनों को, महीनों को मुकर्रर किया हुआ है। पालूस कहता है, मुझे तुम्हारी बाबत डर है कहीं ऐसा ना हो जो मेहनत मैंने तुम पर की बेफायदा जाए, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। बहुत सी बातें हैं। मैंने उस दिन पूछा था कि जो हम बाप बेटा करते हैं ये किस लिए करते हैं। कुछ ने कहा जी कि हमारी दुआ इससे शुरू होती है, कुछ ने कहा जी कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि आदत बनी हुई है, कुछ ने कहा जी कि हमारी ये पहचान है कि हम सलीब अपने ऊपर बनाते हैं। इस सच को जाने के हम क्यों करते हैं, या फिर एक रस्म है कि इसके अलावा हमारी इबादत शुरू नहीं होगी। कड़वी बातें हैं, ये हम अपने बाप दादा से सीखते आए हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस, मैंने आपसे कहा था ना, कहीं पर भी हमें नहीं जिक्र मिलता कि जब तुम दुआ करो या गिरजे घर में जाओ तो ऐसे ऐसे करना, कहीं नहीं जिक्र मिलता। अगर मिलता है तो फिर मैं भी आपके साथ करूंगा या जो करना चाहते हैं। दूसरी बात, पिछले दिनों में यह भी सवाल पूछा गया कि दुआए रबानी हम क्यों पढ़ते हैं। दुआए रबानी हम पढ़ते हैं कि समझें कि क्या हमें सिखाया जा रहा है, खुदावंद यीशु मसीह बता रहा है कि किस तरह दुआ करनी है, या फिर हमने एक रस्म बना ली है कि ये करेंगे तो इबादत शुरू होगी, ये करेंगे तो इबादत खत्म होगी। क्या यीशु मसीह ने कहीं कहा था कि जब तुम दुआ करना तो इस तरह करना, जब तुम दुआ करना तो इस तरह खत्म करना? नहीं। कहां से शुरू हुई? इंसानी रस्में, इंसानी अहकाम हमने खुद शुरू किए। और कड़वी सच्चाई है, आए मेरे साथ देखें लूका की इंजील, उसका दो बाप। यह वाला क्रिसमस के महीना में बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, और कुछ ने इसे गलत ही याद किया हुआ है। लूका की इंजील, उसका दो बाप। आए, दो बाप को एक बार जरा छोड़ दें, पहले बाप में ही आ जाएं। लूका की इंजील, उसका पहला बाप, उसके 26वीं आयत से, 26वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। छठे महीने में जबराइल फरिश्ते ने, फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कवारी का नाम मरियम था। खुदावन खुदा जब कुछ कुछ लिखता है तो वो साफ साफ लिखता है, ये नहीं कहता हाँ यम 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 यम। खुदा हमारा ऐसा खुदा नहीं, जैसे बहुत दफा पीरों के पास जाते हैं तो पीर, तेरी माणू, तेरी भैनू, तेरी भैनू, तेरी माणू, इन्हां दे विच ही ओ बाबे ने नंबर देता ही, ओ बाबे ने बरकत चाहिए, ओ बाबे दियां गालां च भी बरकत ही। नाफरमानी बिल्कुल क्या है, नाकाबले कबूल बात। खुदा का फरिश्ता आया, उसे कहां पर भेजा गया? गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी हुई थी, उसके उसके मंगेतर का नाम यूसुफ था और वो कवारी का नाम मरियम था। ये नहीं कहा कि फलां जगह पर फरिश्ता जी तुसी चले जाना ते उत्थे जाके आपे ही लभ लेना। नहीं, खुदा जो कुछ चाहता है वो दुरुस्त तरीके से लिखता है। आगे हंसने की यह बात, हंसें, थोड़ी देर में हम रोएंगे। और फरिश्ता ने उसके पास आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने आकर मुझ पर सलामती चाही, जैसे हम जब किसी के घर जाते हैं तो कहते हैं सलाम जी। ये खुदा की सिखाई हुई बहुत उम्दा बात है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को घरों में जाने से पहले क्या कहा था? जिस घर में जाओ तो क्या कहना? तुम्हारी सलामती हो। अगर वहां पर कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारी सलामती उन पर ठहरेगी, वरना तुम्हारा सलाम तुम पर वापस आ जाएगा। इसलिए मत परेशान हो, मत परेशान हो कि जी फलाने मैनू सलाम नहीं किया, फलाने मैनू सलाम नहीं किया। नहीं किया तो खुदा उसको बरकत दे। हो सकता है उसने अभी बाइबल में पढ़ा ही नहीं। आपको बहुत से मिलेंगे वड्डी बाइबल उदे नाल तीन चार किताबां ते तुरे फिरनगे, कहणगे जी सानू सलाम नहीं कीता, गुस्सा बहुत आया। जो कोई सलाम भेजता है उस पर सलामती भेजो। सो फरिश्ते ने आकर कहा, तुझ पर सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है ऐ, और खुदावत तेरे साथ है। और आगे क्या लिखा है, फरिश्ते ने उससे कहा कि ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यसू रखना। फरिश्तों को जो हदायत की जाती है वो साफ साफ, वो पैगाम में चीनी वाला पानी नहीं बना के मिलाते। इससे मुराद ये कि मैं आपको कहीं जी पे मेहमान आए हैं तो उनको नींबू पानी पिलाएं, और नहीं नींबू पानी तो कौड़ा कौड़ा हुंदा वा, थोड़ी जी खंड पालो मीठा हो जाएगा। यानी कि मीठा मिला के बातें करते फरिश्ते ऐसा नहीं करते। कड़वा पैगाम है तो कड़वा देते हैं, सच्चा पैगाम है तो सच्चा देते हैं। सो फरिश्ते ने पैगाम दिया कि खुदा ने किस मकसद के लिए मुझे भेजा है। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप का तख्त उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। क्या फरिश्ते ने मजाक किया? नहीं, वो सच बोल रहा था, वो सच बोल रहा था। फरिश्ते ने मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती, क्योंकि अभी मेरी शादी नहीं, ये कैसे हो सकता है? खुदावंद के रूहुल कुद्दस के वसीला से। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, के खुदावंद यसु मसीह तेरे रहम में खुदा की कुदरत से पैदा होगा, और खुदा की कुदरत के वसीला से वो दुनिया में उसकी मनादी की जाएगी, क्योंकि वो खुदा का बेटा कहलाएगा। अब कड़वा सच, बहुत दफा हम सबको ये आदत भी बनी हुई है, और हमने ये याद भी की हुई है, और हम इसे मानते हैं कि इसे करने से हमारी दुआ पूरी होती है। सलामे मरियम, क्या बाइबल मुकद्दस में कहीं पर लिखा है कि सलामे मरियम पढ़ने से हमें निजात मिलेगी? नहीं। यहां पर यह लिखा है, सलाम तुझको जिस पर खुदा का फजल हुआ है, तू औरतों में मुबारक है। और आगे बाकी कितनी बातें हैं जो किस कहां से हैं, ये इंसानी अहकामात, इंसानी सोच। अगर आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि इस्लाम मरियम से ना हमें निजात मिल सकती है, ना उसके पढ़ने से हमारी दुआ कबूल का पूरी होती है, ना उससे दुआ कम होती है। बाइबल मुकद्दस में हमें कहीं इसका जिक्र नहीं मिलता, चाहे जिसके सामने मुझे खड़ा कर लें, क्योंकि खुदा के कलाम में ये क्या है, कोई बात है, कोई तुमको बेफायदा बातों से गुमराह ना करे। बाइबल मुकद्दस में हमें ये जिक्र मिलता है कि कहां, कहीं पर जिक्र मिलता है कि क्या कहा गया है कि मरियम मुकस्सा मरियम हमारे गुनाहों के लिए दुआ करे और हमारे गुनाह माफ होंगे? नहीं। किसके वसीला से गुनाह माफ होते हैं? यसु मसीह के वसीला से, यसु मसीह के वसीला से। खुदा के दाहिने तरफ कौन बैठा है? यसु मसीह। और कौन? यसु मसीह। इसलिए अगर आप इस रस्म को रखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, खुशी से पढ़ें, लेकिन सच ये है, मैं सच से नहीं टलूंगा, क्योंकि खुदा के कलाम में हमें कहीं नहीं लिखा कि पतरस हमारे लिए दुआ करेगा तो हमारे गुनाह माफ होंगे, या मुकस्सा मरियम हमारे लिए दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त, ताकि हम निजात पाएं। निजात किसके वसीला से है? यसु मसीह के वसीला। या फिर हम यसु मसीह की बात माने, या फिर हम पादरियों, बहुओं और फादरों की बात माने। किसकी बात माननी चाहिए? यसु मसीह की। मेरी बात ना माने। खुदा का कलाम 66 ही 67 किताबें आपके पास हैं, इसका मुतालिया करें। आज सुबह मैं ये बता रहा था कि जो कड़वे सच मैं बताऊंगा उसके बाद, जैसे यसु मसीह को छोड़कर उसके शिगिर्द कहते थे क्या हो गए, तीन पांच हो गए दुनिया की बातें, तीन पांच से मुराद उसे छोड़कर चले गए, कि ये बहुत कड़वी बातें करता है। वही लोग जो यीशु मसीह के गुण गाते थे, आने वाले दिनों में उसे क्या कहेंगे, इसे सलीब दो सलीब दो। हो सकता है आप में भी किसी को खड़ा होकर कहे, और पादरी साहब हो इन्हों की पता, इन्हों की पता, असी ते रस्मां बचपन तो सीख दे आए हैं। मैं भी जब छोटा सा था अपने दादा के साथ, बूटा मसीह जिसकी कब्र कब्रस्तान में है, दाना मसीह जिसकी कब्र कब्रस्तान में है, अमैनुअल मसीह जिसकी कब्र कब्रस्तान में है, जिसके मानने वाले सौ के हिसाब से हैं, सौों के हिसाब से हैं। अगर मैं अपने खानदान के साथ मिलकर अपने रीति रिवाज को पूरा करूं, तो फिर मैं मसीह की बात को पूरा नहीं करूंगा। चाहते हैं मैं अपने बाप दादा की बात को पूरा करूं कि काला इलम नूरी इलम करूं? चाहते हैं? करने को मैं कर सकता हूं, कहूंगा ये मेरे बाप दादा की बात है, मैं कैसे इसे छोड़ सकता हूं। आज इसी तरह अगर आपसे भी ये सच बयान किया जा रहा है, तो आप भी हो सकता कहें कि जी हमें तो शुरू से पढ़ाई जा रही है, पढ़ें, लेकिन सवाल करें कि क्या ये बाइबल मुकद्दस में से है या इंसानों ने खुद तैयार की है। बाइबल मुकद्दस में बहुत से हवालात मिलते हैं। आए देखें खुदा की दाहिनी तरफ कौन बैठा है, कौन हमारे अब और हमारी मौत के बाद हमारी शिफायत करता है, यीशु मसीह। यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना को बाद में पढ़ेंगे जी, आए खुदावंत के कलाम में से। रोमियो आठ बाप उसकी 34वीं आयत, 31वीं आयत से पढ़ेंगे। रोमियो आठ बाप उसकी 31वीं आयत, बस इन बातों की बाबत क्या कहें, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया, बल्कि हम सब की खातर उसे हवाले कर दिया, और उसके साथ सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। खुदा जिसने अपने बेटे को दे दिया है, हम उसे बहुत दफा कहते हैं, ओ खुदा तू गलत हाँ, नहीं नहीं खुदा मैं अपने माँ प्यो दिया, अपने दादी दादा दिया, उन्हां दिया रस्मां पिछे चलना वा, तेरे पिछे नहीं चलना। नहीं यकीन? आए मेरे साथ एक हवाला देखें, इमाल की किताब उसका 11वां बाब। ये आपका नहीं, मेरा नहीं, पतरस का भी ऐसा ही हाल था। जब तक खुदावंद यीशु मसीह ने उसे दोबारा बारा ना कहा, दोबारा दोबारा ना कहा, तो उसे समझ ना आई। हाँ जी, 11वें बाब की पहली आयत, यहां पर लिखा, और रसूलों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि गैर कौमों ने भी खुदा का कलाम कबूल किया। यहूदी ईमानदार जिन्होंने यीशु को कबूल किया, जब उन्होंने सुना कि गैर कौमों ने यीशु को कबूल किया और बरकत पाई, तो हैरान हो गए। जैसे आज अगर कोई हिंदू, पठान, सिख या मुस्लिम यीशु मसीह को कबूल कर ले, तो हम भी कहेंगे कि ये कैसे हो गया, ये खुदा का काम है। क्या लिखा है, जब पतरस यरूशलेम में आया तो मख्तून उससे ये बहस करने लगे कि तू ना मख्तूनों के पास गया और उनके साथ खाना खाया। पतरस ने शुरू से वो अमर तरतीबवार उनसे बयान किया, सारी कहानी उनको बयान की। आगे क्या लिखा है, मैं याफा के शहर में दुआ कर रहा था और बेखुदी की हालत में, यानी कि खुदा का रूस पर आया, बेखुदी की हालत में एक रोया देखी कि कोई चीज बड़ी चादर की तरह चारों कोनों से लिपटी हुई आसमान से उतरकर मुझ तक आई। आसमान से एक चादर उतरी, उस पर जब मैंने गौर से नजर की तो जमीन के चुपाओं, यानी के रींगने वाले, जिहड़े चुपाओं से मुराद यानी के जानवर, जिसमें बैल गाय भैंस जो भी खाने पीने वाले जानवर हैं, और जंगली जानवर यानी के वो जंगली जानवर जिसमें बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनकी हमें पहचान ही नहीं, बहुत से ऐसे जानवर जिनके हमें पता ही नहीं, जंगली जानवर और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे देखे, और ये आवाज भी सुनी कि ऐ पतरस उठ जिबा कर और खा। लेकिन मैंने कहा ऐ खुदावंद हरगिज नहीं। क्यों कहा? हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज मुंह में नहीं गई, नापाक चीज मेरे मुंह में नहीं गई। इसके जवाब में दूसरी बार आसमान से आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है उन्हें तू हराम ना कर। तीसरी बार फिर ऐसा ही हुआ, फिर वो सब चीजें आसमान की तरफ खींच ली गई। खुदा हमें बार बार कहता रहता है, इस रोया में यही देखते हैं पत्रस, नहीं नहीं खुदा खुदा तू वो तेनू भुलेखा पैंदा लगता, ओ भाई नहीं। बहुत दफा हम भी ऐसे करते हैं, हम खुदा को ना करके इंसानों को कहते हैं जी खुशामदीद, हम आपकी बात मानेंगे, मेरी बात ना माने, मैं आज मर जाऊं 3 महीने में मेरी हड्डियां सवा बन जाएंगी खुदा के कलाम के मुताबिक, मैं खाक हूं फिर खाक में मिल जाऊंगा। यीशु मसीह है जो जिंदा है, जिंदा रहेगा और उसमें हम सब दोबारा जिंदा किए जाएंगे। मेरी बातों पर यकीन ना करें, खुदा के कलाम पर सवाल करें कि ये कहां से आई है, ये बात कहां से शुरू हुई है। सो पत्रस यीशु मसीह से सवाल करता है, नहीं नहीं हम भी ऐसा करते हैं, करते हैं कि नहीं। आज आप जो सुन रहे हैं, आप में से कई सोच रहे हैं कि लगता पादरी साहब ने आज जना कहते कि लड़के घरों आए या पादरी साहब नू कुछ हो गया, पादरी साहब तो सानू ही कहते कि अपना कहते कि सूए च बोई जा रहे हैं। नहीं, आप सब से प्यार करता हूँ, आप सब की इज्जत करता हूँ, आप सब से खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत मारना चाहता हूँ। सात समुंदर पार जिसे जमीन पर आसमान कहा जाता है अमेरिका को छोड़कर, इसीलिए आपके पास आया हूँ ताकि अपने भेजने वाले की मर्जी पूरा करूँ। और आप सब ने ये देखा है, आप सब इस बात से जानते हैं कि आज के दौर में कोई किसी को मतलब के बगैर नहीं पूछता, अपने भाई भी अपने भाई से मतलब के बगैर नहीं चलते। लेकिन आज अगर मैं, मेरी बीवी, सारा सुकून चैन छोड़कर हम यहाँ पर आए हैं इसलिए खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए, ताकि आप तक खुदा की आवाज़ पहुँचाई जाए, ताकि आने वाली नस्ल मसीही कहलाएं। क्या कहलाएं? मसीही। ना कि जी मैं जी मुक्ति फौज का हूँ, ना कि जी मैं कैथलिक चर्च का हूँ, ना कि जी मैं ARP का हूँ, कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, जब पहली बार मसीहियों ने, यीशु मसीह के शिगिर्दों ने मनादी की तो क्या कहा गया उनको? मसीह के शिगिर्द, और क्या कहा गया? मसीही। नहीं यकीन? निकाले इमाल की किताब 11वां बाप, इमाल 11वां बाप उसकी 26वीं आयत, यहां पर देखते हैं, जब वो मिला तो उसे अतातिया में लाया और ऐसा हुआ कि वो साल भर कलीसिया की जमायत में शामिल होते रहे और बहुत से लोगों को तलीम देते रहे। और शिगिर्द पहले अतातिया में ही मसीही कहलाए, इंताकिया में वो मसीही कहलाए, ना कोई कैथलिक कहलाया, ना कोई मुक्ति फौज का कहलाया, ना कोई ग्रेस बाइबल का कहलाया, ना कोई ARP का कहलाया, ना कोई गोते का कहलाया, ना कोई रसूली कलीसिया का कहलाया। क्या कहलाए? मसीही। मुझसे कोई भी पूछता है तो, अगर बाहर कोई पूछे तो वो पूछते हैं जी आप कौन हैं? आई एम क्रिश्चियन। क्रिश्चियन इंग्लिश में और उर्दू में, आप कौन है जी? चाहे मैं जायका रेस्टोरेंट पर हूं, चाहे चमन रेस्टोरेंट पर, आप कौन है जी? मसीही। मैं मसीही हूं। इसलिए अफसोस के बाद कहना पड़ता है कि हम बहुत दफा अपने नामों के साथ, आप कौन है जी? मैं कैथलिक हूं जी, और कैथलिक का मतलब ही नहीं पता। मैं कौन हूं जी? मैं रसूली कलीसिया का हूं जी। अफसोस। इसलिए ये कड़वी, वो छुरी तलवार की तरह तेज बातें हैं जो हमें इसीलिए आज सुनने की मिल रही हैं, ताकि हम देखें कि कोई हमको बेफायदा बातों से गुमराह ना करे। आप कौन हैं?
मसीही।
कौन हैं?
मसीही।
मसीही किसको कहा जाता है? जो मसीह के ऊपर ईमान रखता है। सो आप मसीही कहलाना चाहते हैं या आप कहलवाना चाहते हैं जी छोड़ें मुझे, शुरू ना करें, आज के लिए इतना ही काफी है। सो हम मसीही हैं, इसलिए इस बात पर खत्म करना चाहता हूं। अगर मैं आज सच बोलने के बायस आप सबके लिए आपके लिए दुश्मन बना हूं तो ऐसा ही हो, क्योंकि मैं तो सच बोलूंगा, सच बोलूंगा अपने घर वालों से भी। इसीलिए मैंने अपने घर से बात शुरू की थी। जब मेरा अब्बू लाहौर से एक मूर्ति लेकर आया और वो मूर्ति किसी देवी की थी, उससे मेरी अम्मी ने भी दूसरों ने भी हलवे बांटने। बुध का दिन था, कौन सा दिन था जी? मंगल, मंगल, मंगल ते टूट जाएंगे संगल, ये नारा हमारे घर में होता था, मंगल ते टूट जाएंगे संगल। ठूठी लेके आओ, सौगी लेके आओ, बादाम लेके आओ, अगर पैसे ज्यादा हैं तो देसी घी का हलवा बनाओ, और पैसे ज्यादा है तो नान मंगवाओ। सब फजूल और बेफायदा है। अगर हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो फिर यीशु की बात, यीशु की बात, वरना हम पीछे तो चलते रहेंगे लेकिन उसका फायदा नहीं होगा। इस जमीन पर फायदा हो सकता है, हम कहें कि जी भाजी की पकाया नान ते हलवा ते नाल बिरयानी, ते नारा ला के चलो जी प्लेट ले लेनी। ऐसे मसीही नहीं बनना। नारे से मुराद आप सब जानते हैं कि जिथे देखी अपना रोटी परात, उथे ही गुजारी सारी रात। ऐसे नहीं, यीशु मसीह के लोगों ने मसीह का इनकार नहीं किया, भूख हर तरह की मुश्किल नंगेपन का सामना किया। आने वाले दिनों में आपको साधु सुंदर सिंह की फिल्म दिखाऊंगा कि उस खुदा के सूरमा ने कितनी खिदमत की। वो सिख था, बचपन से सिख, खानदानी सिख, पिंड का बड़ा चौधरी सिख था, और सिख ने यीशु मसीह को कबूल किया और उसने अपने बाप दादा की बातों को नहीं बल्कि यीशु मसीह को उसने अहमियत दी। सो आए हम भी अपनी जिंदगियों में यीशु मसीह को अहमियत दें, ना मुझे ना किसी और को। मैं आज मर जाऊंगा, बात खत्म, यीशु मसीह हमेशा जिंदा रहेगा। आए हम खुदा के हुजूर झुकें।